आज का चूंकि टॉपिक हमारा ईमान का है, तजदीद ईमान है। कुरान पाक की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 24। आइए थोड़ा सा देखेंगे कि आप रमज़ान में जो नेकियां करेंगे उसका बीज किधर है। मसलन सूरत इब्राहिम आयत 24 है, अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसला, क्या बस तुमने नहीं देखा। अल्लाह करे कि हमें अरबी जुबान से इतना कुछ शगफ हासिल हो जाए कि हम इसकी टोन को समझें। कुरान की वो चीदा चीदा आयात जिसमें कुरान का एक मोजज़ाना रंग दिखता है, मिरेकल है ये। अलम तारा, कुरान पाक की एक सूरत है, अलम तारा कैफ वाला रब्बू का अलम। अच्छा, अभी मैंने सूरह बकरा की पहली आयत क्या पढ़ी, अलिफ लाम मीम, एक ही तरह लिखा हुआ है ना। अरब का थोड़ा सा फर्क है, ये जो लफ्ज़ है ना अलम तारा, ये गौर करने के लिए, इसको कुरान की तमासील कहते हैं। लिख ले बेशक, तिमसाल होता है ना, मिसालें, एनालॉजीज। कुरान के अंदर तकरीबन 300 से ज्यादा आयात जो है ना वो मिसालों से साबित की गई हैं। अल्लाह ताला इसमें एक दरख्त की मिसाल देते हैं कलमा तैयब से। नबी सल्लम ने एक मौके पे अपने प्यारे सहाबा से पूछा, बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते, जो सारा साल फल देता है। अच्छा, उस महफिल में अबू बकर भी बैठे थे, उमर भी थे, हजरत इब्ने उमर भी थे, सब खामोश रहे। उनको पता भी होता था तो नहीं बताते थे कि कहीं गलत ना बोल दें। अल्लाह के नबी ने जब देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा तो आपने क्या कहा कि ये खजूर का दरख्त है, डेट ट्री, इसके पत्ते नहीं झड़ते, इसमें फल भी आता है और ये वो है। जब उस महफिल से बाहर गए ना तो इब्ने उमर जो बिल्कुल अभी छोटे 10-11 साल के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि अब्बा, जब नबी सल्लम ने पूछा था कि बता अलम तारा कई फदारबल्ला मसलन कली मतन तयजिबा कशर जरतिन तयजिबा, इसकी तरफ इशारा था, तो मेरे दिल में खजूर का ही दरख्त आया था। कहा फिर तुम बोले क्यों नहीं। कहा कि इसलिए कि इतने बड़े बड़े साहबी बैठे हैं, आप थे, अबू बकर थे, तो उनके होते हुए मैं क्या बोलता। उस पर हजरत उमर फारूक ने फरमाया था कि बेटा, अगर तुम उस वक्त इसका जवाब दे देते तो मेरे लिए तुम दुनिया की हर चीज़ से अजीज़ होते। यानी मेरे बेटे को इतनी बात की समझ आई। लेकिन इस वक्त इसमें जो आपने लफ्ज़ देखना है वो क्या है, का शजरत इन तयजीबा। आपका मेरा ये रमज़ान सिर्फ इसी सूरत में ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान होगा जब हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डलेगा। किसी भी दरख्त को अगर आप जहन में लाएं तो सबसे पहले क्या है, असलुहा साबित, उसकी जड़ ज़मीन के अंदर घुसी होती है, व फरूहा फिस समा, और उसकी शाहें आसमान पे हैं। आइए ज़रा तसव्वुर की निगाह से एक दरख्त को देखते हैं। यहाँ आपको बीज से फल बनने का मंजर दिखेगा। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रूट टू फ्रूट। आप देखिए कि बीज कहाँ डाला जाता है, मिट्टी में, फिर क्या होता है, उसको पानी दिया जाता है, फिर थोड़ा सा इंतज़ार किया जाता है, फिर उसके बाद उसके अंदर से जड़ें निकलती हैं। जो चीज़ हमें पहले दिखती है वो जड़ नहीं दिखती, क्योंकि वो नीचे जाती है। हमें क्या दिखता है, तना दिखता है, ऐसी है ना। बिल्कुल इसी तरह से पौधे को पनपने के लिए अच्छे बीज, जरखेज़ ज़मीन, उम्दा खाद और पानी और सूरज के साथ साथ सूरज की बहुत खुली रोशनी की ज़रूरत होती है। हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डलता है। मिट्टी की जगह क्या है, बंदा मोमिन का दिल। पानी कौन सा है, वही इलाही। ये जो आप और मैं सीख रहे हैं ना, कुरान पढ़ते हैं या जिसकी आपको दावत दी जाती है, ये बंदे का कलाम नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड कोई सिलेबस नहीं है, ये आसमान से आया। अपने आप को झंझोड़ कर पूछिए, दुनिया में किसी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे एक मुल्क से दूसरे मुल्क पढ़ने के लिए बच्चों को भेजना सिर्फ नामों की बेस पे। किसी ने अपनी कोई दुख भरी कहानी सुनाई कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के नाम पे बच्चे को चूज कर लिया कि ये उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है और अब दुखी है। लेकिन जो कलाम आसमान से उतरता है उसकी क्या जरूरत नहीं है, पानी, इल्म और हिदायत है। सबसे पहले आप देखिए कि इसकी जड़ें नीचे गई। हमें जड़ें नहीं दिखती, वो नीचे होती हैं। इसी तरह ईमान, अब यहाँ हमारा वो टॉपिक है जिस पे हमें दो दिन बात करनी है, तजदीद ईमान। और तजदीद के अपने ईमान को नया करो। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सीनों में ईमान पुराना हो जाता है जैसे तुम्हारा कपड़ा पुराना हो जाता है। अब तो रिवाज ही नहीं रहा ना पुराने को नया करने का। पहले दौर में लोग पेवंद लगाते थे। ईमान को रेनोवेट करने की ज़रूरत है। तजदीद क्या है? रेनोवेशन ऑफ ईमान। कितनी भी खूबसूरत कोठी, महल, ताजमहल, शाही किला, कोई बड़ी से बड़ी इमारत जहन में लाइए जो कभी आपने देखी हो, उसको जहन में रखिएगा। उसको रेनोवेशन की ज़रूरत होती है? होती है। जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो रेनोवेट होगी। ईमान हमारा आपका जद्दी पुश्ती है। अम्मी मुसलमान, अब्बू मुसलमान, नाना नानी, दादा दादी सारे मुसलमान थे, ऐसी है ना। लेकिन हमें क्या करना है? अपने इस ईमान को नया करना है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसकी फिक्र करें। तो लिहाजा हमने इस रमज़ान में अपने ईमान के बीज को, ईमान के पौधे को कुरान की खाद और कुरान का पानी देना है। आप देख रहे हैं कि जड़ें क्या हैं? तीन चीज़ें। 13 साल नबी सल्लम ने मक्का में जो सब्जेक्ट पढ़ाए थे वो ईमान बिल्ला, ईमान बिर रसूल और ईमान बिल आखिरा था। इसमें 3-4 और भी हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए। आमनतु बिल्लाहि व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह। लेकिन ये तीन चीज़ों में ही सब आ जाता है। आइए ज़रा रमज़ान से पहले हम अपना ईमान तो देखें। चंद सवाल जो मैं अपने आप से भी करूंगी और आपसे भी करूंगी, क्या मेरा अल्लाह ताला के मामले में अकीदा दुरुस्त? कहीं शौरी और गैर शौरी तौर पे मैं अल्लाह ताला के बारे में कुछ गलत तो नहीं कह देती? अंदर तू, बाहर तू, ऊपर तू, नीचे तू, अल्लाह हर जगह, अल्लाह हलूल कर गया। मैं सिर्फ आपको चंद हिंट दूंगी, इधर मैं आपको पढ़ा नहीं रही ये सब कुछ। सिर्फ मैं आपको ये कहूंगी कि रमज़ान के लंबे गर्मी वाले रोज़े रखने से पहले इन दिनों में, अल्हम्दुलिल्लाह शाबान का महीना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा ईमान के बारे में पढ़ लें। और इंशाल्लाह हमारे इस साल का जो ज़ादुल खैर आएगा, हर साल हम रमज़ान से पहले 4 डेज का प्रेप रमज़ान सेशन करते हैं। हमारे इस साल के टॉपिक रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन से जुड़ता है। सहाबा का ईमान देखेंगे हम, उसके day 1 पर ये बातें होंगी, सुनिएगा आप लोग भी। लेकिन बहुत ज़रूरी है, पहले पेपर वर्क पूरा करते हैं फिर जहाज़ में बैठते हैं। सिर्फ एक पेपर ना हो। अभी चंद दिन पहले हमारी एक साथी थी, नॉर्वे से आ रही थी तैयारी के साथ। आपको पता कितने पापड़ बेल के बंदा एयरपोर्ट पे पहुंचता है, सब कुछ ले के दे के कर करा के एयरपोर्ट पे पहुंची और सिर्फ कोई एक पेपर गलती से किसी दूसरे बैग में घर में रह गया था। डायरेक्ट पेपर ज़रूरी भी नहीं था, नहीं जाने दिया उन्होंने। टिकट गई, सब कुछ गया, नहीं जाके लाती तो आ नहीं सकती थी। क्या आप में ये चाहते हैं? वेरी सीरियस मैटर। सिर्फ एक डिजिट गलत डाल दें, पासवर्ड नहीं चलता, कैप्स लॉक खुल जाए, नंबर वही डाल रहे हैं, नाम वही डाल रहे हैं, लेटर वही डाल रहे हैं, नहीं चलता बिल्कुल। आप मैं इस खुशफहमी में है, माजरत के साथ। आज तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, कल करूँगी इस पर ज़्यादा बात इंशाल्लाह। अपने दोस्तों को बुलाइए, जिससे भी मोहब्बत है उसको लाएं, अपनी बेटियों को लाएं। अपना अल्लाह से ताल्लुक, रसूल से ताल्लुक, बीसियों खराबी हैं हमारे रसूल के ताल्लुक में, उम्मत झगड़ों में पड़ी हुई है। भाई हमें किसी से क्या लेना, हमें किसी फिरके से कुछ नहीं लेना, हमें किसी जमात का साथ नहीं देना, हमारा कोई मसलक नहीं। बट कम अज़ कम मुझे ये तो पता चले कि मेरे रसूल कौन थे, क्या था। फुर्सत ही नहीं, चलिए मोहब्बत तो बहुत है। हमने कितनी किताबें पढ़ी नबी के बारे में, क्या आज तक की इतनी ज़िंदगी में मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, आपकी पैदाइश से लेकर आपके विसाल तक पूरी किताब पढ़ी? मुझे 3 सीरत की किताबों के नाम आते हैं। मुझे सहाबा कराम में से 10 सहाबा के नाम फौरन मैं ले सकती हूँ। आपकी अजवाज मुतहरात के नाम आते हैं, आपकी कितनी औलादें थी, आपके कितने गज़वात थे। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत के दावे हैं बस, ताल्लुक कम है। फिर अकीदे आखरत, इस पे तो 2 घंटे बात करने की ज़रूरत है। क्या आपका मेरा अकीदे आखरत ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى اور شَرًّا يَرَى. مجھے یقین ہے کہ میری زبان سے جو لفظ نکلنا ہے کل تلنا ہے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کیا مجھے اس کا یقین ہے؟ اور اگر یقین ہوتا تو ہم اتنا بے تکا بولتے؟ ہم اتنی باتیں کرتے بیکار. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مال میں سے ایک چھوٹی سی حرام کی چیز نکل آئی. ایئرپورٹ پہ سیکیورٹیز والوں کو آپ کے سامان میں اتنا سا چاقو، اتنی سی ڈبی ہیروئن کی، ایک پوڑی ڈرگس کی مل جائے، یہ تو نہیں کہ آپ کو جانے نہیں دیں گے، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے کہ آئیے ذرا ادھر ہمارے ساتھ، ذرا آپ کو حوالات کی سیر کراتے ہیں. کتنے آرام سے بیٹھے. ہمارا علم آخرت ہے بس. وی ہیو انفارمیشن اباؤٹ آخرہ، فکر آخرت نہیں ہے. ہمیں اپنے علم آخرت کو فکر آخرت میں بدلنا ہے. تو یہ ٹاپکس پڑھنے کے ہیں، تھوڑے تھوڑے ابھی پڑھ لیں، لیکن قرآن پڑھیں گے. پورے قرآن کو اگر آپ 30 پارے سی پارا میں ڈیوائڈ کر کے دیکھتے ہیں نا، ہم سبھی کو پتہ ہے 30 پارے، اور ماشاء اللہ ہم نے تو رمضان میں 6-6 پارے بھی پڑھنے ہوتے ہیں، 5 بھی اور 4 بھی، تاکہ 3-4 قرآن پورے ہو جائیں. آپ کو تو پورا قرآن 2/3 یعنی آؤٹ آف 30 پاراز 20 پاراز مکہ میں نازل ہوئے تھے. پہلے پارے سے آپ شروع کریں نا بالفرض، تو 20ویں پارے تک مکہ کے 13 سالوں میں نازل ہو گیا، باقی 10 سالوں میں 10 پارے ہوئے. اور یہ جو 20 پارے آئے اس میں صرف یہی 3 ٹاپک تھے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ. کوئی نماز کی بات نہیں، کوئی روزوں کے حکم نہیں، کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں، کوئی حج کی باتیں نہیں، کوئی سود نہیں، کوئی شراب کی بات نہیں ہے، صرف یہ 3 چیزیں تھیں. یہ آج ہمارا انڈو پاک کلچر میں الٹا چلتے ہیں ہم، معذرت. اس پہ بات کرے کہتے چھوڑو چھوڑو پڑھنے دو، کر رہے ہیں نا نیکی تو کر رہے ہیں نا، کیا پتہ اللہ کو ان کی کون سی ادا پسند آ جائے. ٹھیک ہے، مجھے آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں اپنی تو فکر ہے نا. وہی بچہ پیدا ہو جائے شادی کے بغیر تو وہ الیگل ہے، اور شادی کے بعد وہ بچہ آتا ہے 20 لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. پروسیس ہے. ایک لبرل سے لبرل باپ کسی اجنبی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیکھے تو اس کو غصہ آ جائے گا، اور وہی باپ کچھ لوگوں کے بیچ میں ایجاب و قبول کرا کے اس بچی کو اس مرد ساتھ بھیج دیتا ہے. فرق کس بات کا ہے؟ طریقے کا فرق ہے. رسول نے اگر نماز پڑھنا سکھایا تو شادی کرنا بھی سکھائی، معاملات بھی سکھائے. ہماری یہ چیزیں کمزور ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ رمضان میں جب فاتحہ سے ناز تک بغیر چھٹی کیے قرآن سنیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایمان کے پودے پہ وہ بہار آئے گی کہ جو کبھی آپ کو دکھی نہیں ہونے دے گی. ابھی تو بس میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ آپ کا ایمان بڑھ جائے. ایمان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کی محبت اور آخرت پر یقین بھی اور مضبوط ہو جاتا ہے. جی، جیسے آپ دیکھیے پیچھے پتلا سا تنا تھا نا، اب کتنا موٹا تنا ہے. یہ پتے آپ گن سکتے ہیں درخت کے اوپر، یہ آپ کی نیکیاں. انشاءاللہ آپ نے ایمان کے بیج سے اسلام کا سرسبز درخت بننا ہے، تاکہ آپ کے جو پھل اتریں اس کو آپ بھی انجوائے کریں، دوسرے بھی کریں. پورا اسلام اس ایک درخت میں چھپا ہوا ہے. اگر آپ کو دکھ رہا ہے نا، نیچے جڑیں ہیں دور دور تک. کہتے ہیں کہ درخت کا سایہ جہاں تک پڑتا ہے نا، وہاں تک نیچے جڑیں بھی ہوتی ہیں، تبھی تو وہ کھڑا رہتا ہے. یہ جو نیچے ہیں نا جڑیں، یہ توکل، شکر، اللہ پہ نظریں، یہ سب اللہ سے تعلق اور رسول سے معاملات اور آخرت، یہ 3 چیزیں آپ کی سیدھی ہو جائیں، آپ کا درخت بالکل ٹھیک ہوگا. بیچ میں تنا دیکھ رہے ہیں، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، جہاد، یہ سٹیمپ ہے. ایک درخت کی طرح آپ کا ایمان بڑھتا ہے. پہلے دل میں اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کا خوف بھی، اس کا ڈر بھی، الایمان بین الخوف والرجا. پھر آپ کی عید عبادت اچھی ہوتی ہے. یہ آپ کے بچے جو نماز نہیں پڑھتے، پتہ کیوں نہیں پڑھتے؟ دل میں اللہ کی محبت کا بیج نہیں ڈلا، اللہ کے شکر کا پتہ ہی نہیں. نماز کیا ہے؟ تھینک یو ٹو اللہ تعالیٰ، تھینک یو نوٹ اللہ کو. آپ مجھے پانی دیں میں کہوں شکریہ، میں آپ کو ایک کینڈی دے دوں آپ کے جزاک اللہ خیر، تو وہ رب اتنا کچھ دیتا ہے. دن میں 5 بار جا کے ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تھینک یو سو مچ، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما ماتنا ولیہ النشور. बहरहाल जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आती है ना, तो फिर पता क्या कैफियत होती है, नमाज बोझ नहीं लगती, बल्कि हजारों सजदे मचल रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। कभी तो मजाज के पर्दे से निकल के बाहर तो आ, कभी तो रब मेरे सामने आ, मैं तेरे आगे झुक जाऊंगा, फिर नमाज मुश्किल नहीं लगती, फिर दिल चाहता है नमाज पे, फिर रोजे मुश्किल नहीं लगते। फिर आप कहते हाय इतनी गर्मी, हाय इतने लंबे रोजे, नहीं अल्लाह आपके लिए रोजा क्या बड़ी बात है, आपने तो इतनी नेमतें दी। फिर हाय जकात, फिर वो जकात 100 में से 2.5, हाय 2.5%, इतनी ज्यादा, बाहर की करेंसी को इधर कन्वर्ट करो तो जान निकल जाती है, हालांकि 97.5 पीछे मौजूद है। तो ये सारे मामलात आसान कब होंगे, जब अल्लाह से मोहब्बत होगी। चलिए इबादत पूरी हुई, ऊपर आप देख रहे हैं मामलात, डीलिंग्स, हुकूक उल इबाद जिसको कह लें, ताल्लुकात, ये जितनी ब्रांचेस होती है ना दरख्त की शाखें, ये आपके मेरे लोगों से ताल्लुकात हैं। इसी से ऊपर जाएंगे ना तो पत्ते हैं अखलाक, ये है इस्लाम A to Z। इस्लाम का दरख्त जड़ से तने, तने से शाखों, शाखों से पत्तों और पत्तों से फल तक आता है, और मोमिन एक मुआशरे की ऑक्सीजन होता है। दरख्त ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, बंदे मोमिन अपने अखलाक से अपने इर्द गिर्द वालों का दिल जीत लेता है। वहां कोई उसकी जात से गलत चीज नहीं दिखती लोगों को। पौधा जब तनावर दरख्त बनता है ना, तो ना सिर्फ ये कि माहौल की खूबसूरती में इजाफे का सबब बनता है, बल्कि धूप में छांव देकर ठंडक भी फराहम करता है, दूसरे जानदारों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करता है, और अपने फलों के जरिए सबकी भूख मिटाता है। यही काम एक मोमिन अपने अखलाक से करता है और माशरे को फायदा देते हैं। चंद बातें आपने कुछ चीजें सोचनी है, मेरी जात से कितनों को फायदा हो रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस है, खैरुन नासी, बेहतरीन लोग कौन है लोगों में, अनफहुम, जो नफा देते हैं लोगों को। अल्लाह ताला सूरत रात में क्या फरमाते हैं, जो लोगों को नफा देगा वही बचेगा, फम्मा यनफउन नासु फयमकुस। तो इंशाल्लाह हमने नफामंद बनना है, लोगों को फायदा देना है। क्या पता चला, रमजान कुरान का महीना है और कुरान हिदायत की तरफ बुलाता है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल्लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। आपने इंशाल्लाह इस रमजान को कुरान का महीना बनाना है। जब आप कुरान पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको अभी से बता दूं, फिर आप बेअमल नहीं रहेंगे, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, बेमकसदियत खत्म हो जाएगी, आप अपनी जाती जिंदगी के झगड़ों में नहीं पड़े रहेंगे, ये कि नहीं वो नहीं, हमें तो एक बच्चे का गम भी बहुत है रुलाने के लिए। नहीं, इंशाल्लाह हमने रमजान में कुरान के साथ नया ताल्लुक जोड़ना, ये रिवाइवल है। कभी कभी नाराजगी हो जाती है ना, भाई बहनों में भी हो जाती है, फिर मना लेते हैं एक दूसरे को, उनके घर चले गए, वो आपके आ गए, थोड़े दिन बस सब भूल जाता है। अगर हम कुरान से दूर हो चुके हैं ना, तो इंशाल्लाह रमजान हमारे लिए नेकियों का मौसम बहार बनेगा। अबू दाऊद की रिवायत है 1371, आपने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम बहुत ताकीद कर रहे थे, यानी एम्फेसाइज कर रहे थे, और रमजान के क्याम की हमें रगबत दिला रहे थे, यानी तरावियां पढ़ने की, और फरमाते जिसने रमजान में ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से क्याम किया, तो इसके तमाम साबिका गुना माफ कर दिए जाएंगे। क्या आप चाहते हैं हमारे पिछले गुना माफ हो जाए? चाहते हैं? अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमारे पिछले गुना भी माफ कराए और हमें अगले गुनाहों से भी बचाने की तौफीक दे। तो जब हम इतनी सी बात सुन चुके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारी रमजान की रूहानी तैयारी थोड़ी सी हो गई है। अभी तक जितनी बात की, मैं उसका समअप करके अपनी आज की बात को पूरा करूंगी, और इंशाल्लाह ताला कल हम नए टॉपिक के साथ चलेंगे। पहली बात, ईमान की मिसाल एक बीज की सी मिसाल है, बीज के बोने से दरख्त परवान चढ़ता है। इसी तरह ईमान का लेवल जितना बुलंद, उतना ही तनावर दरख्त बनता है, यानी दरख्त क्या है, एक सच्चा मोमिन है। फिर तकवा और ईमान का गहरा ताल्लुक है, ईमान यकीन का नाम है, दिल से तस्दीक और आज़ा से अमल का नाम है। तीन चीज़ों का नाम है ईमान, यकीन, एतमाद और खौफ। اپنا سارا معاملہ اللہ پہ ڈال دیں. دل سے تصدیق کرنی ہے اور اذان سے عمل کرنا ہے. تصدیق بالقلب, ویریفائی وتھ یور ہارٹ. اقرار باللسان, زبان سے اقرار. اور عمل بالجوارح, ایک ایک کر کے اپنے لمبس, آنکھ, کان, ہاتھ, زبان, ان سب سے ہم نے انشاءاللہ نیکیاں کمانی ہیں. عمل بھی اسی کا حصہ ہے. اور یاد رکھیے کہ رمضان جو ہے نا, یہ تربیت نفس کا ہمیں بہترین موقع دیتا ہے. آپ کی تربیت ہوتی ہے اس میں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اہم خطبہ دیا اور اس میں فرمایا, اے لوگو, تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے جس کی ایک رات یعنی شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. کتنے خوش قسمت ہیں آپ سے لگنے والی ہے اگر آپ کو 70% آف ملے کچھ برانڈز کے نام پر. لیں گے؟ سب لیں گے. سیل میں نے سنا ہے کہ لوگ بیوش ہو جاتے ہیں, اتنا رش ہوتا ہے. حالانکہ وہ اصل ان کی کاسٹ سے بھی کم ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی میں اس سیل سے فائدہ اٹھانا ہے. پھر ایک اور اینگل ہے دلوں کی صفائی. دل صاف کر کے اٹھیے آج. کسی روٹھے کو منائیے, یہاں بیٹھے ہوئے سوچئے بھائی سے ناراض ہو, نند کے ساتھ دل خراب ہے, ساس کو تو بخشنا ہی نہیں ہم نے, ویسے اللہ بخش دے تو اور بات ہے, میاں صاحب نے تو زندگی خراب کر دی. آپ نے رمضان سے پہلے سب کو معاف کرنا. ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے اللہ کے نبی سے کہا گیا, لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا, ہر صاف دل اور زبان کا سچا. صحابہ کرام نے عرض کیا, زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں, صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا, پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو, نہ بغاوت, نہ کینہ اور نہ حسد. میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کس کو یہ چار چیزیں اپنے اندر دکھ رہی ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں. ہمارے دلوں میں تو ہزاروں شکوے ہیں, گلے ہیں. چلیے نیکسٹ, دوسروں کو معاف کریں. یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے کندھے ہلکے کیجیے. کیسے؟ دلوں کا کینہ ختم کریں. اینیمیٹی, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے پوچھا نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. ٹھیک ہے, ہوگا, جیلسی ہوتی ہے, تعلقات بگڑتے. ابھی آپ نے درخت دیکھا نا, شاخیں کیسے الجھتی ہیں, لیکن جا کے ایک دوسرے کو ٹھوکر تو نہیں مارتی. اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا, اس برو و صابرو, صبر کے لیے خود کو تیار کریں. انسانی معاملات کا صبر بہت مشکل ہے, لیکن اس کا اجر بہت ہے. حضرت عائشہ سے روایت, اللہ کے نبی شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے, اور آپ شعبان کے پورے دنوں میں روزے سے رہتے. یہ بخاری کی روایت ہے 1970. اب آپ کہیں گے ہم نے تو سنا ہوا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہیں رکھتے, یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے حکم ہے. اللہ کے نبی کا معاملہ فرق تھا. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اب زیادہ رکھ لیے تو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکیں گے, آپ کمزور ہو جائیں گے, تو پھر نہ رکھیں, لیکن کوئی اتنی حرام حلال والی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح اور کیا ہم کریں, شعبان میں زیادہ دعائیں مانگیں کہ اللہ رمضان خیریت سے گزرے. ایک بات مشاہدے کی ہے, ہر سال رمضان سے پہلے بہت ڈیتھ ہوتی ہیں, کھڑے کھڑے لوگ چلے جاتے ہیں. شاید انہوں نے بھی ہماری طرح سے نیتیں کی ہوتی ہیں کہ رمضان میں نیکیاں کرنی ہیں, اس لیے اب خوب گناہ کر لو, اللہ معاف کرے. پھر ایک اور کام, اپنی نظروں کی حفاظت کرے. آج سکرین سے ہی نظریں نہیں ہٹتی, باہر کہاں لگیں گی. کوئی مرد کسی عورت کو نہ دیکھے اس نظر سے کہ شہوت ہو, اسی طرح عورت کو بھی نہیں دیکھنا. اپنی نظروں کو بھی سے بچائیے, ٹائم سیو کیجیے اپنا. پھر اسی طرح اپنے اذکار اور دعاؤں کی لسٹ بنائیں, جو رمضان میں انشاءاللہ آپ نے کثرت سے مانگنی بھی ہیں اور اذکار کرنے ہیں. پھر کم بولنے کی عادت اپنائیں, کیونکہ اس سے ایمان بڑھتا ہے. جو بندوں سے اتنی باتیں کر لے, اس کا اللہ سے بات کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا ارادہ کیجیے. اور ہم نے اس سال جو قرآن پڑھنا ہے نا, اس کا تھیم پتہ کیا ہوگا, کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. انشاءاللہ ہم نے چلتے پھرتے قرآن بننا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے, اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آئے اور اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہوتی وہ گزر جائے, اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے. या तरगीब व तरहीब की रिवायत है 1680। तो क्या पता रमज़ान आया और हमने उसको पूछा ही नहीं। क्या करें, नहायत खुश दिली और शुक्रगुजारी से रमज़ान का इस्तकबाल करें। वेलकम रमदान, मरहबा। फिर अपनी सारी ओवरऑल इबादत के लिए चेक लिस्ट बनाते हैं। हाथ की पांच उंगलियों पे पांच चीज़ें नोट कीजिए। नंबर एक, अपनी नीयत दुरुस्त करें। यहाँ बैठे बैठे अपनी नीयत को दुरुस्त करें। नीयत पता क्या है, नेविगेटर में एड्रेस डालना। जब एड्रेस ही गलत डालेंगे तो पहुँचेंगे कैसे। फिर हुकूक़ुल इबाद, माँ बाप अगर साथ हैं आपके, बच्चे बीवी शौहर, इनके हकूक़ अदा करूँगी। अल्लाह का हक अदा करते हुए बंदों के हक नहीं मारने। हाँ ये भी नहीं कि अल्लाह के हक बंदों को दे के हर वक्त गिल्टी पड़े रहो कि जी ये तो मैं अल्लाह को नाराज़ कर रही हूँ और बंदों को नाराज़ कर रही हूँ, पता नहीं क्या कुछ। तीसरी बात, पिछले गुनाह जो हम कर चुके हैं उस पर तौबा कीजिए ताकि साफ सुथरे होकर रमज़ान में दाखिल हों। कहीं जाना हो तो शावर लेके साफ सुथरे होके जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह हमने रमज़ान से पहले तौबा करनी है। फिर ज़्यादा खाने पीने का अहतमाम करने से परहेज़ करें, अभी भी और रमज़ान में भी। और सबसे बढ़कर क्या कि अपने अंदर इखलास और लिल्लाहियत पैदा करें। वो क्या होती है, मेरा हर काम अल्लाह के लिए, हर काम अल्लाह के लिए। और आखिर में एक कॉल है, शेख अहमद ईसा हैं उनका, वो कहते हैं कि तिलावत कुरान की कसरत कुरान पढ़ने वाले के नफ्स की तरबियत करती है, और इसको पता ही नहीं चलता और इसका ईमान बढ़ रहा होता है, हत्ता कि इसका ईमान बहुत बढ़ जाता है, इसका दिल बहुत मुतमईन हो जाता है, इसकी ज़िंदगी मुबारक बन जाती है। रिस्क चाहे थोड़ा मिले या ज़्यादा, इसके अंदर कनाआत पैदा हो जाती है। ज़्यादा हंसी मजाक वाली बातें ख़त्म हो जाती हैं, इसके मिजाज में आजजी और संजीदगी आ जाती है। बातचीत के अंदर फसाहत के फूल झड़ते हैं, ज़रा अपने आप को चेक भी करते जाएं। अल्लाह सुब्हान तआला इस शख्स की गुफ्तगू से ऐसे अल्फाज बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जो कुरान के शायाने शान नहीं, बेहुदा मजालिस अल्लाह सुब्हान तआला छुड़वा देते हैं, ऐसी कुव्वत पैदा कर देते हैं कि खुद बहुत गुनाहों वाले काम उससे छुट जाते हैं। इसका दिल नूर से रोशन हो जाता है और नूर से चमकने लगता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आइए ज़रा आखिर में एक दुआ याद करते हैं, आप मेरे साथ दोहरा लें और फिर ये दुआ हमारी ज़ुबान पे रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा जलिल कुरआना रबी अकल्बी व नूर सदरी। ए अल्लाह, इस कुरान को मेरे दिल की बहार और मेरे सीने का नूर बना दे। अल्लाह ताला आपसे भी और मुझसे भी राज़ी हो। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।